हाँ स्टार्ट करिए। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप से अध्याय एक श्लोक क्रमांक 36। पापमेवाश्रयेदस्मा
अत्वेतानाततायिनः
तस्मानार्हा वयं हन्तुम्
धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान्
स्वजनं हि कथं हत्वा
सुखिनः श्याम माधव।
तो यहाँ पे अर्जुन अपने जो रीजन बताए थे युद्ध ना करने के लिए, उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? आप इसमें एक विरोधाभास देखेंगे। विरोधाभास ये है कि एक तरफ तो अर्जुन बोल रहे हैं आतताई, और दूसरी तरफ कह रहे हैं उनको मारेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है। जो कोई आतताई है अगर उसका कोई व्यक्ति वध करता है तो कोई पाप चढ़ता नहीं है, लेकिन इस समय माया के प्रभाव से, और वो माया का प्रभाव या मोह का प्रभाव भी भगवान की इच्छा के कारण हुआ था, वो ऐसा सोचने लगे हैं। जिस प्रकार से भागवतम में युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद मोह से ग्रस्त हो गए थे और उनको बोला जा रहा था कि भाई आप अश्वमेध यज्ञ कर लो, अगर आपको लग रहा है कि पाप चढ़ा गया है आपके ऊपर इतने लोगों को मारने का, तो आप अश्वमेध यज्ञ कर लीजिए, उससे पाप कट जाता है। तो कहते हैं नहीं भाई, उसमें भी तो हत्या होती है, तो एक हत्या से दूसरी हत्या का पाप कैसे कटेगा? लेकिन ये तर्क नहीं लगाया जा सकता अश्वमेध यज्ञ के ऊपर। धर्म का प्रोसेस है, जब ब्राह्मण लोग उसे अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे बात देखा जाए तो इलॉजिकल बोल रहे हैं अर्जुन। धर्म के अनुसार जो व्यक्ति आतताई होता है उसका वध कर देना ही उचित होता है, उसमें कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन वहां ये बोल रहे हैं आतताई हैं और अगर उनको हम मारेंगे तो हमको कोई पाप नहीं लगेगा, इसलिए नहीं करना चाहिए। तो देख सकते हैं कि जब व्यक्ति मोहित हो जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इसके लिए गुरु के पास जाना बहुत आवश्यक है। कुछ भी कार्य हम करते हैं तो उसके लिए एक प्रामाणिक व्यक्ति से सलाह लेना एक बुद्धिमान मनुष्य का बुद्धिमत्ता का सूचक है, क्योंकि हमेशा हर समय हम लोग सही बुद्धि हमारे पास होती नहीं है और उसका सही से निर्णय हम कर नहीं पाते हमेशा। तात्पर्य
ये आतताई यहाँ पे अधर्म में अधर्म की तरफ से लड़ रहे हैं, इसलिए आतताई बोल रहे हैं ना?
नहीं, आतताई प्रभुपाद जी बताएंगे, छह प्रकार के लोग हैं जो लोगों को आतताई बोला जाता है। वैसे आतताई का अर्थ ही है कि जो अधर्म का कारण करे, अधर्म अगर नहीं करेगा तो आतताई हो ही नहीं सकता। इसके ऊपर बहुत सुंदर बात आज मैं सुन रहा था कि इस जगत में हर जीवात्मा भोग करने के ऊपर जुटा पड़ा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है, तो निश्चित रूप से उस इंद्रिय तृप्ति में बाधा आने पर वो किसी ना किसी को दुख में जरूर डालेगा। रिपीट करूंगा इस बात को, क्योंकि इस जगत में बद्ध आत्मा हमेशा भोग ढूंढ रहा है, व्यग्र है भोग ढूंढने के लिए, व्यग्र समझते हैं उत्तेजित है, परेशान है, तो निश्चित रूप से किसी ना किसी को दुख में जरूर डालेगा, और यही लोगों के आतताई होने का कारण होता है। और आप देखेंगे तात्पर्य को, ग्रंथ जो पढ़ेंगे, जितने भी आतताई हैं उनका कारण यही है, किसी को दुख देने की भावना। तात्पर्य देखिएगा, वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं, विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। और अगर आप ध्यान दें तो कौरवों ने 6 प्रकार के आतताई कार्य पांडवों के प्रति किए थे। भीम को विष दिया था, घर में अग्नि लगाई थी लाक्षाग्रह में, हथियारों से आक्रमण कितनी बार उन्होंने किया, धन तो लूट ही लिया था 13 साल के लिए, भूमि राज्य छीन लिया था, और पराई अपनी उनकी पत्नी का अपहरण करने का प्रयास भी किया था, और अपहरण मतलब उन्होंने बेइज्जती करने का भी प्रयास किया। तो आप देख सकते हैं 6 प्रकार से आतताई हैं, फिर भी अर्जुन ये बोल रहे हैं कि इनको मारने से मुझको पाप लगेगा। तो ये उनकी करुणा का ही प्रदर्शन है, लेकिन फिर भी ये चीज एनकरेज नहीं की जाती। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आततायियों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु हैं, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता है, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। एक अद्भुत बात है कि अर्जुन दो प्रकार की टोपियां पहने हुए हैं, समझते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वियरिंग टू हैट्स, एक वैष्णव है और क्षत्रिय भी है। तो वैष्णव के रूप में उनका हृदय बहुत कोमल है, लेकिन क्षत्रिय का धर्म भी उनको पालन करना है। तो इस कारण से ये जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, उसी वजह से कि जो उनका वैष्णव का गुण है वो बार बार उनके हृदय में करुणा को करुणा से उनका हृदय को अभिभूत कर दे रहा है, मतलब द्रवित किया जा रहा है, और साथ साथ वो सोच रहा है कि क्षत्रिय का धर्म भी है, उसे पालन करना है मुझे। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं करी। रावण आततायी था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। प्रभुपाद जी इसको बात बताते हैं कि नम्रता का मतलब नहीं है कि व्यक्ति कुछ किसी व्यक्ति के प्रति अगर गलत हो रहा हो तो वो कुछ उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले। सहिष्णुता और नम्रता का अर्थ ये नहीं है कि लोगों के प्रति अत्याचार होता रहे और व्यक्ति शांत बैठा रहे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि आप यश के आप नम्र होना चाहिए और यश लाभ की इच्छा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि लोगों पे भौतिक कह सकते हैं, हमारे महाराज बता रहे थे मास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, इंग्लिश में शब्द आता है मास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब एक साथ बहुत से लोगों को मारने के हथियार। लेकिन आजकल के हथियार क्या है, मास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब व्यक्ति का मन को भ्रमित करने वाले ये हथियार हैं, टीवी, इंटरनेट और ये सब। तो इनके माध्यम से जीवात्मा पूरी तरह से जीवन के लक्ष्य से भ्रमित है। ये बहुत बड़ा अत्याचार है, बहुत बड़ी हिंसा हो रही है जीवात्माओं के प्रति। तो इनके अगेंस्ट वैष्णवों को प्रचार करना बहुत आवश्यक है, ताकि लोग इस प्रकार के आध्यात्मिक हनन से, आध्यात्मिक हनन समझते हैं आप लोग, आध्यात्मिक हनन का मतलब हो गया आध्यात्मिक हत्या से वो बच जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए कायरता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कि बस रूम में घुस जाए व्यक्ति और कुछ कार्य नहीं करे, करना चाहिए प्रचार। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आततायियों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। तो आप लोग कह सकते हैं कि पितामह ने तो कोई उनके प्रति द्रोह नहीं किया था, भीष्म ने क्या द्रोह किया था, लेकिन द्रोह करने वालों के साथ में है इसलिए उनको आतताई में गिना जा रहा है, और इस समय भी अब युद्ध करने वाले के पक्ष की तरफ से है। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह समान आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। यहां प्रभुपाद एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि आतताई कोई सामान्य होता तो अर्जुन उसको दंड देते। जैसे जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण करने का प्रयास किया था तो भीम ने उसको खूब पिटाई किया था और बड़ी बेइज्जती भी करी थी, बाद में छोड़ा था, लेकिन फिर भी उसकी बेइज्जती तो करी थी ना, मारने वाले थे। तो यहां लेकिन वो देख रहे हैं कि सारे सगे संबंधी सामने हैं, आतताई के रूप में हैं आतताई, लेकिन सारे सगे संबंधी हैं तो मैं कैसे मारूंगा, ये उनके सामने दिक्कत आ रही है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। कौन सा आदेश? इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है, ये आदेश। एक्चुअली क्षमा करना ये कायरता नहीं है, क्षमा वो व्यक्ति करता है, अलग अलग तरह से कह सकते हैं, लेकिन क्षमा वो व्यक्ति करता है जिसके अंदर दंड देने की शक्ति भी हो और फिर भी वो क्षमा कर दे, तब उसके क्षमाशीलता को क्षमाशीलता कहा जाता है। जिसके अंदर दंड देने की शक्ति नहीं है वो क्षमा कर देगा, उसको खास वैल्यू थोड़ी ना, हमने आपको क्षमा कर दिया जी, कोई बात। जैसे हरिदास ठाकुर जी जान रहे थे और देख रहे थे कि सुदर्शन चक्र इन मुसलमानों को मार देगा जो उनको 22 बाजारों में पीट रहे हैं। ठीक है, उनके पास खुद मारने की शक्ति नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा से सुदर्शन देख रहे थे, आया था उनको, भगवान कहते नहीं नहीं आप इनको रोक दीजिए, इनको मत मारिए, इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कि दंड देने की शक्ति हरिदास ठाकुर जी के पास थी, यह है, नित्यानंद प्रभु के पास थी, है, बलराम जी स्वयं है। एक ही बार में उन क्या नाम था उसका जो उनका मजाक बना रहा था, अनिरुद्ध की शादी, हाँ रुक्मी, वो एक गदा से मारा, काम खत्म कर दिया। रुक्मी के बराबर शक्तिशाली नहीं थे जगाई मदाई, नहीं मुक्का नहीं मरवा, गदा मारी थी, तो फिर भी वो उनको क्षमा कर देते। तो ये क्षमाशीलता उस व्यक्ति का गुण है जो क्षमा कर सकता है, अर्जुन के दंड दे सकता है फिर भी क्षमा कर दे। अर्जुन, इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा, अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वे अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। तो आप फिर देख रहे हैं कि अर्जुन अपने श्रेय के बारे में भी सोच रहे हैं, तो ये मैंने पहले भी चर्चा किया था कि आगे के जीवन के बारे में सोच रहे हैं, इस कारण से स्वजनों को मारने का पाप वो नहीं लेना चाहते। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। ये लाइन बहुत गहरी है। भक्ति करते समय व्यक्ति को लगेगा कि मेरे संग तो अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे संग अच्छा नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारा हिसाब हमारी बुद्धि के अनुसार होता है, और हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारी बुद्धि थोड़ी कम है, स्पेशली कलयुग में हमें थोड़ा कम ही दी गई है। ये हम लोग प्रचार, मैं बोल भी रहा हूं लेकिन इस बात को बहुत बार स्वीकार करना मुश्किल होता है। जब अच्छा होता है तो लोग, हमारे जीवन में सब कुछ बढ़िया चलता है तो हम कहते हैं हाँ सब बढ़िया है, भगवान की कृपा है, लेकिन जब दुख आता है तब व्यक्ति नहीं कह पाता इस प्रकार से। धीरे धीरे भक्ति करते हुए व्यक्ति सहन तो कर लेता है, कम से कम व्यक्ति सहन तो कर लेता है लेकिन खुश नहीं होता। हमारे महाराज इस बारे में बता रहे थे, कह रहे थे कि भक्ति करते करते और क्लास सुनते सुनते तो जब कोई दुख आएगा तो हम कम से कम चुपचाप सहन कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा है। इसको इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं, भाई हमको बहुत आना था बहुत कम आया, लेकिन हम लोग बड़े प्रसन्न नहीं होते। जब कृपा हो, कृपा का अनुभव करते हैं तो हमको प्रसन्न होना चाहिए ना, लेकिन वो स्थिति अद्भुत है भक्ति की, जब कष्ट में भी वो भगवान की कृपा का साक्षात अनुभव करे और उसमें बड़ा प्रसन्न हो जाए। जैसे आप लोगों को याद हो, वसुदेव ब्राह्मण था ना, वसुदेव ब्राह्मण था जिसके शरीर में कोढ़ हो गया था, कीड़े आ गए थे, और उन कीड़े जो गिर जाते थे तो वापस उठा लेता था उनको, और फिर वो सोचता था कि ये शरीर तो खराब है, कम से कम इन कीड़ों की सेवा में लग जा रहा है। अब आप ये कहेंगे कि ये सारी बातें तो हमको पता हैं, ये पास टाइम तो पता है, ये बार बार क्यों बताया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भक्ति में इंफॉर्मेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या इंपॉर्टेंट है? ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए महाप्रभु प्रहलाद महाराज की चरित्र को 108 बार सुने, इसलिए तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि महाप्रभु तो शुद्ध भक्त है, शुद्ध हैं, भगवान है साक्षात, लेकिन जितनी बार उन गुणों को, उन व्याख्यानों को आप सुनेंगे उतनी बार आपका हृदय और अधिक उन चीजों से प्रभावित होता चला जाएगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो मैंने सुन लिया है अब मुझे दोबारा क्या सुनने की आवश्यकता है। अब ये सोचिए कि जब अमृत महोत्सव समुद्र मंथन के बारे में परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं तो क्या उनको पता नहीं समृद्ध मंथन के बारे में? लेकिन उनको आग्रह है अधिक सुनने का, विस्तार में सुनने का, गहराई से सुनने का। जितनी बार भगवान की कथाओं को या भक्तों की कथाओं को हम सुनते हैं तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और गहरी हो जाती है। इसके ऊपर परम पूज्य सचिनंदन महाराज बता रहे थे कि कुछ भी सब्जेक्ट आप डिस्कस करते हो, ध्यान दीजिएगा शब्दों को, कुछ भी आप डिस्कस करते हो वो आपकी चेतना में और गहरा चला जाता है। पढ़ते हैं ठीक है, चर्चा मतलब सुनते हैं ठीक है, लेकिन आप डिस्कस करते हैं तो वो हृदय में और गहरा चला जाता है। तो कितनी खतरनाक बात है कि पूरा दिन भर हम लोग कितनी बहुत सारी भौतिक बातें चर्चा करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, तो अपने हृदय में उड़ेलते रहते हैं गहरा 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 गहरा। इसीलिए हरि चर्चा भगवान की वार्ता में संलग्न होना चाहिए, तो भगवान की जो कथाएं वो हमारे हृदय में गहरी उतरेंगी। कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं इस श्लोक के संबंध में। हाँ जी,
अभी जैसे आपने बीच में बताया कि जो मन को इधर उधर भगाने वाले जो लोग कार्य करते हैं मन,
हाँ,
को,
हाँ,
तो लोग तो पहले से ही अज्ञान में
है, हाँ,
और जब ये लोग नया नया मन को विचलन करने वाले अलग चीज बनाते हैं,
यस,
तो जब लोग इसको देखते हैं जो भी यूज करते हैं तो उससे वो पाप भी हो जाता है उसमें,
यस,
तो क्या उसमें लोगों का दोष है या फिर जो बनाने वाले उनका?
दोनों का दोष है। जो लोग उनको, इसे कैसे कहते हैं, अंधा यथान्देर उपनीयमाना तेपी स्वतंत्रा उरुदाम निबद्ध। अगर मैं अंधा हूं तो कम से कम अंधे की शरण तो नहीं लेनी चाहिए ना,
लेकिन
है ना, अंधा हूं तो अंधे की शरण लूंगा तो मैं गड्ढे में गिरूंगा। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है, या उत्तर कह सकते सोल्यूशन है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि लोग नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, भगवान हमारी गति है वो नहीं जानते हैं। तो सोल्यूशन क्या है, जिन लोगों को पता है वो उसको बताएंगे तभी वो जान पाएंगे, और कोई सोल्यूशन नहीं है। जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और लोग पहले से भ्रमित हैं, तो भ्रमित होना ही चाहते हैं, सही बात है। इसीलिए जब भक्तों को प्रचार करने की आवश्यकता है, भगवत गीता का वचन जब व्यक्ति सुनता है तब वो समझ पाता है, अरे मैं तो अंधे की शरण में था। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया। और हम सभी का अनुभव इस प्रकार से, आप देखिए लोग बोलते हैं आईआईटी कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, या कहीं विदेश चले जाओ वहां पैसा कमा लो, ये सब अंधा यथान्देर उपनीय माना वाला बात। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, सही रास्ते पर चलना चाहता है, लेकिन उनको गाइड करने वाले लोग हैं वैसे ही हैं। जैसे एक व्यक्ति को उसके एक रिश्तेदार बोल रहे थे, तुम ये गाँव में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, जीवन क्यों खराब कर रहे हो, कुछ आगे नौकरी करो, ये करो। तो वो सोच रहे हैं कि नौकरी करने से जीवन जो है वो सफल हो जाएगा, लेकिन शास्त्र क्या बोल रहा है, पराभवस तावद अभोध जातो यावन न जिज्ञासत आत्म तत्वम। जब तक व्यक्ति आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता कि मैं कौन हूं, चाहे वो नौकरी कर रहा हो चाहे वो गांव में हो, उसका जीवन एक हार है, व्यर्थ जीवन जी रहा है। इसको गीता में बोलते हैं भगवान, मोघम पार्थ स जीवति, हे पार्थ वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, मोघम मतलब यूजलेसली उसने बताया। तो इसके लिए भक्तों का कर्तव्य है कि खुद अपने जीवन में भक्ति का प्रयास मतलब अभ्यास करें, और अधिक से अधिक लोगों को बताने का प्रयास करें, एटलीस्ट जो लोग सुनना चाहते हैं। उन अंधों में से कोई अंधा तो कभी कभी देखेगा ना, रे मैं बार बार गड्ढे में गिर रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ होगी, और बहुत से लोग इस प्रकार से ढूंढना चाहते हैं, और फिर जब उनको सच्चा ज्ञान मिलता है तो फिर उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये तो सत्य बात है।
दूसरा क्वेश्चन है इसमें, भगवान को लक्ष्मीपति क्यों कहा जा रहा है?
क्योंकि भगवान लक्ष्मीपति हैं। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं लक्ष्मीपति क्यों कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लक्ष्मीपति हैं, माधव हैं, तो आप उसको मुझे ऐसा प्रेरणा क्यों दे रहे हैं? अर्जुन को ऐसा लग रहा है। अच्छा, अद्भुत बात यह है कि अभी वो भगवान के ऊपर थोप रहे हैं, ऐसा लग रहा है भगवान युद्ध करवा रहे हैं, कि ऐसा लग रहा है अर्जुन ब्लेम कर रहे हैं कि भगवान आपकी वजह से युद्ध हो रहा है, ऐसा भगवान युद्ध नहीं करवा रहे हैं। लेकिन भगवान तो रथ को सामने लेके गए हैं, दोनों के बीच में, तो मैं छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, युद्ध करना तो युद्ध कर सकते हो। कुछ अभी तक बोले नहीं महाराज, सॉरी भगवान ने कुछ बोला नहीं अभी तक, कुछ बोल नहीं रहे, खाली वो भगवान को बोल रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने 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 डाउट्स को प्रस्तुत कर रहे हैं। और आप देखेंगे जब तक भगवान की शरण नहीं लेंगे भगवान कुछ नहीं बोलेंगे। आप देखिएगा दूसरे अध्याय तक भगवान कुछ नहीं बोल रहे, कितनी बार संबोधित किया ना, माधव शब्द